नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द ड्रीम मशीन। एम मिचेल वॉर्ड्रॉप की गैरकथात्मक इतिहास पुस्तक है, जो जेसीआर लिकलाइडर के जीवन और विचारों के माध्यम से आधुनिक कंप्यूटिंग के उदय को समझाती है। इसका विषय केवल किसी एक आविष्कार, कंपनी या मशीन का इतिहास नहीं है, यह उस वैचारिक बदलाव का अध्ययन है जिसमें विशाल दूरस्थ गणना यंत्रों को व्यक्ति के सोचने, सीखने और संवाद करने के साथी के रूप में देखना शुरू किया गया। वॉल्ड्रॉप लिकलाइडर की मनोविज्ञान, ध्वनि विज्ञान और कंप्यूटिंग में रुचियों को जोड़ते हुए बताते हैं कि इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट की कल्पना कैसे बनी। पुस्तक में ARPA के शोध परिवेश, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और बाद में जेरॉक्स पार्क जैसी संस्थाओं की भूमिका भी आती है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तकनीकी क्रांतियां केवल बेहतर हार्डवेयर से नहीं बनती, उन्हें दिशा देने वाले विचार, सार्वजनिक शोध वित्त पोषण, सहयोगी समुदाय और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन भी उतने ही निर्णायक होते हैं। इसलिए यह जीवनी विज्ञान, इतिहास और प्रौद्योगिकी नीति का संयुक्त अध्ययन है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मानव और कंप्यूटर की साझेदारी का लिकलाइडर का मूल विचार। पुस्तक का केंद्रीय विचार लिकलाइडर की मानव कंप्यूटर सहजीविता की अवधारणा है। उस समय कंप्यूटर मुख्यतः बैच प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। उपयोगकर्ता निर्देश या पंच कार्ड जमा करता, लंबा इंतजार करता और फिर परिणाम पाता। लिकलाइडर ने इस व्यवस्था को बौद्धिक काम के लिए अपर्याप्त माना। उनकी कल्पना में कंप्यूटर केवल उत्तर निकालने वाली मशीन नहीं, बल्कि ऐसा त्वरित सहयोगी था जो मनुष्य को जानकारी खोजने, विकल्पों की तुलना करने, मॉडल बनाने और जटिल समस्याओं पर विचार करने में सहायता दे। इस दृष्टि का अर्थ मनुष्य को हटाना नहीं था, बल्कि मशीन की गति, स्मृति और गणना को मानवीय निर्णय, उद्देश्य और संदर्भ बोध के साथ जोड़ना था। वॉर्ड्रॉप यह स्पष्ट करते हैं कि यही अंतर्वाद की इंटरैक्टिव प्रणालियों की बुनियाद बना। स्क्रीन, ग्राफिक्स, पॉइंटिंग उपकरण और व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर को अलग अलग सुविधाएं मानने के बजाय उन्हें तत्काल मानवीय नियंत्रण संभव बनाने वाली व्यवस्था के भाग के रूप में देखा जा सकता है। पुस्तक इस विचार की सीमा भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाती है। तकनीक उपयोगी तभी बनती है जब उसका डिजाइन वास्तविक मानवीय काम, ध्यान और संवाद के अनुकूल हो। केवल अधिक शक्तिशाली मशीन अपने आप बेहतर बौद्धिक साझेदार नहीं बन जाती। दूसरा, इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क से इंटरनेट की सामाजिक कल्पना तक। लिकलाइडर के इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क संबंधी विचार को पुस्तक इंटरनेट के आरंभिक वैचारिक स्रोतों में रखती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने नेटवर्क को केवल कंप्यूटरों को जोड़ने की इंजीनियरिंग समस्या नहीं माना। उन्होंने ऐसे वातावरण की संभावना देखी जिसमें अलग अलग स्थानों पर मौजूद लोग साझा सूचना, प्रोग्राम और संवाद के माध्यम से मिलकर काम कर सके। बाद में रॉबर्ट टेलर के साथ कंप्यूटर को संचार उपकरण के रूप में देखने वाला विचार इसी दिशा को और स्पष्ट करता है। वॉल्ड्रॉप के विवरण में नेटवर्क की उपयोगिता फाइलों या गणनात्मक संसाधनों के आदान प्रदान से आगे जाती है। इसका प्रभाव शोध समुदायों की गति पर पड़ता है, क्योंकि दूरस्थ सहयोगियों के बीच संपर्क नियमित और प्रत्यक्ष बन सकता है। यह पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक बिंदु है। आज इंटरनेट को अक्सर व्यावसायिक उत्पादों या केवल तकनीकी प्रोटोकॉल की उपलब्धि की तरह बताया जाता है, जबकि यहाँ उसकी प्रारंभिक प्रेरणा ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण में दिखाई देती है। फिर भी पुस्तक नेटवर्क को अनिवार्य नियति नहीं मानती। ARPA की प्राथमिकताएं, शोधकर्ताओं का पारस्परिक भरोसा और संस्थागत समर्थन ऐसे विकल्प थे जिनके बिना यह कल्पना व्यापक तकनीकी ढांचे में नहीं बदलती। तीसरा, ARPA में शोध प्रबंधन ने विचारों को संस्थागत शक्ति दी। द ड्रीम मशीन की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक यह बताना है कि लिकलाइडर की भूमिका केवल विचारक की नहीं थी। ARPA में उनके नेतृत्व ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के शोध को साझा दिशा देने में मदद की। वे स्वयं पर्सनल कंप्यूटर या इंटरनेट के अंतिम उत्पादों के निर्माता नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों और संस्थाओं को समर्थन देने वाली परिस्थितियां विकसित की जो इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग पर काम कर रहे थे। वॉर्ड्रॉप इस प्रक्रिया को प्रशासन की मामूली पृष्ठभूमि नहीं मानते। शोध धन का लचीला उपयोग, सक्षम लोगों की पहचान, अलग अलग परियोजनाओं के बीच संपर्क और अनावश्यक बाधाओं को हटाना नवाचार की वास्तविक अवसंरचना बनते हैं। इस दृष्टि से ARPA का मॉडल आदेशात्मक नियंत्रण से अलग दिखता है। लक्ष्य तय किए जाते हैं, पर विशेषज्ञों को प्रयोग और दिशा खोजने की पर्याप्त स्वतंत्रता भी मिलती है। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि दूरगामी तकनीकी प्रगति के लिए केवल प्रतिभाशाली इंजीनियर पर्याप्त नहीं होते, ऐसे संस्थागत संरक्षक भी चाहिए जो अनिश्चित परिणाम वाले बुनियादी शोध को समय, संसाधन और सहकर्मी नेटवर्क दे सके। हालांकि यह मॉडल पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और उच्च स्तर के आपसी विश्वास पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हर संगठन में ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता। चौथा, कंप्यूटर को संस्थागत मशीन से व्यक्तिगत माध्यम बनाने का परिवर्तन। वॉलड्रॉप की कथा उस समय के प्रचलित कंप्यूटिंग मॉडल और लिकलाइडर की वैकल्पिक दृष्टि के अंतर को सामने रखती है। शुरुआती बड़े कंप्यूटर आमतौर पर सरकारों, सेनाओं, निगमों और विशेषज्ञ ऑपरेटरों के नियंत्रण में थे। उनका उपयोग गणना, रिकॉर्ड प्रसंस्करण या केंद्रीकृत प्रशासन के लिए होता था। लिकलाइडर ने अधिक व्यक्तिगत संभावना देखी, जिसमें कंप्यूटर व्यक्ति की रचनात्मकता, सीखने और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाए। यह विचार अपने समय में असामान्य था, क्योंकि मशीनें महंगी, दुर्लभ और उपयोग में कठिन थीं। पुस्तक बताती है कि बाद की पर्सनल कंप्यूटिंग क्रांति को केवल माइक्रोप्रोसेसर की कीमत घटने से नहीं समझा जा सकता। उसके पीछे पहले से विकसित वह बौद्धिक मान्यता थी कि सामान्य लोग भी कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष, दृश्य और प्रयोगात्मक ढंग से काम कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन इसलिए सजावट नहीं, बल्कि पहुंच का प्रयत्न बन जाता है। लिकलाइडर की मनोविज्ञान संबंधी पृष्ठभूमि इस जोर को समझने में मदद करती है। मशीन के नियमों के अनुरूप मनुष्य को ढालने के बजाय प्रणाली को मानवीय सीमाओं और क्षमताओं के अनुसार ढालना चाहिए। पुस्तक साथ ही याद दिलाती है कि व्यक्तिगत सशक्तिकरण का वादा तकनीकी उपलब्धता, कौशल और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है। अंत में, प्रौद्योगिकी का इतिहास पूर्व निर्धारित नहीं, विकल्पों और समुदायों का परिणाम है। पुस्तक का व्यापक ऐतिहासिक तर्क यह है कि आधुनिक कंप्यूटिंग का रास्ता पहले से तय नहीं था। आज माउस, ग्राफिकल इंटरफेस, नेटवर्क और व्यक्तिगत उपकरण इतने सामान्य लगते हैं कि उनका विकास स्वाभाविक प्रतीत हो सकता है। वॉलड्रॉप इस धारणा के विरुद्ध विचारों, संस्थाओं, व्यक्तियों और संयोगों के परस्पर प्रभाव को रखते हैं। लिकलाइडर की दूरदृष्टि प्रभावी इसलिए हुई क्योंकि उसे ARPA में संसाधन मिले, शोधकर्ताओं ने उसे अपनाया और अनेक प्रयोगों ने उसे व्यवहार्य रूप दिए। यही कारण है कि पुस्तक किसी अकेले नायक को संपूर्ण श्रेय देने वाली सरल कथा से बचती है, भले लिकलाइडर उसका केंद्रीय व्यक्तित्व है। इसमें विज्ञान, प्रशासन, डिजाइन और संचार के बीच संबंध को महत्व दिया गया है। इस विश्लेषण का समकालीन अर्थ भी है। नई तकनीकों के बारे में यह मान लेना उचित नहीं कि वे अपने तकनीकी गुणों के कारण निश्चित रूप से किसी एक सामाजिक परिणाम तक पहुंचेंगे। वित्त पोषण, मानक, उपयोगकर्ता अनुभव, संस्थागत उद्देश्य और भागीदारी तय करते हैं कि तकनीक किसके लिए और किस रूप में काम करेगी। इसलिए द ड्रीम मशीन तकनीकी इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि निर्णयों और मूल्यों की जांच के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, द ड्रीम मशीन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटिंग और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर के उद्गम को किसी एक आविष्कार की सूची से अधिक गहराई में समझना चाहते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी, डिजाइनर, उत्पाद प्रबंधक, शोध प्रशासक और प्रौद्योगिकी इतिहास में रुचि रखने वाले पाठक इससे अलग अलग स्तरों पर लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थी यह समझ सकते हैं कि आज परिचित तकनीकी विचार किन समस्याओं के प्रत्युत्तर में उभरे। डिजाइन और उत्पाद से जुड़े लोग देख सकते हैं कि उपयोगकर्ता केंद्रितता का सिद्धांत नया फैशन नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग की एक पुरानी और प्रभावशाली बौद्धिक धारा है। नीति और शोध प्रबंधन से जुड़े पाठकों के लिए ARPA का अनुभव यह प्रश्न उठाता है कि दीर्घकालीन अनिश्चित शोध को किस तरह समर्थन दिया जाए। यह पुस्तक समान विषय की सामान्य तकनीकी इतिहास पुस्तकों से इसलिए अलग है कि यह हार्डवेयर की प्रगति या प्रसिद्ध कंपनियों की सफलता पर केंद्रित नहीं रहती। इसका केंद्र लिकलाइडर है, लेकिन उनका जीवन व्यापक नेटवर्क का प्रवेश द्वार बनता है, जिसमें विचार, वित्त पोषण, संस्थाएं और सहयोगी समुदाय जुड़े हैं। पुस्तक का विस्तार कुछ पाठकों को घना लग सकता है, विशेषकर यदि वे संक्षिप्त इंटरनेट इतिहास चाहते हो, पर यही विस्तार इसकी शक्ति भी है। यह दिखाती है कि कंप्यूटिंग में निर्णायक परिवर्तन तब आया जब मशीन को गणना केंद्र नहीं, मानवीय संवाद और विचार के माध्यम के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं M. मिचेल वॉलड्रॉप, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।